नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर कल मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की 200 से अधिक कंपनियां तैनात की गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार चरम पर विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उभरते युद्ध खतरों का मुकाबला करने के लिए अनुकूलित रक्षा रणनीतियों का आह्वान करते हुए कहा कि ये कोई रणनीतिक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। इस वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.41% बढ़कर 12,11,000 करोड़ रुपए हो गया और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज बिहार के राजगीर में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। झारखंड में 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान कल होगा। मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की 200 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं रांची स्थित हमारे संवाददाता केके लाल से। जी केके लाल जी, पहले चरण के मतदान के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं?
कनक, ये पोलिंग पार्टियों को संबंधित इलाकों में भेजा जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ 225 वैसे संवेदनशील मतदान केंद्र हैं जहाँ पे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए चुनाव कर्मियों को भेजा गया और वे सभी वहां पहुंच चुके हैं। और यहाँ खास बात है कि पेट्रोलिंग तेज कर दिया गया है। राज्य से जुड़े 5 राज्य जैसे मध्य प्रदेश हुआ, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और बिहार, इससे जुड़े सीमावर्ती इलाकों में
The person you are speaking with has put your call.
हमारा संपर्क केके लाल जी से टूट गया है। दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए इस महीने की 20 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों से 179 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 54 प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अभी तक टोटल 53 केसेस हुई एनसीसी का वायलेशन का, उसमें सरायकेला में 3, रांची में 5, सिमडेगा 2, धनबाद 3, रामगढ़ 2, ईस्ट सिंह 2, देवघर 1, गढ़वा 28, चंदाड़ा 1, हसारीबाग 2, पलामू 1, साहिबगंज 1, गिरिडीह 2, टोटल 53 केसेस हुई थी।
झारखंड में एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों के नेता दूसरे चरण के प्रचार में जुटे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने धनबाद के झरिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों से भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।
आपका एक वोट झारखंड का भविष्य तय करने वाला वोट है। आपका एक वोट तय करेगा कि खुद को करोड़पति अरबोंपति बनाने वाला जेएमएम चाहिए कि गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए, नरेंद्र मोदी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिंदरी में चुनावी सभाओं में मतदाताओं से सोच समझकर वोट देने की अपील की।
इन लोगों ने 20 साल चलाया सरकार को, क्या दिया झारखंड के गरीबों को? हमने देखा कि गांव देहात में लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, बिजली का बिल चुकता करने के लिए लोग कर्जा लेता है और बिजली का बिल समय पर नहीं चुकता करने से पुलिस थाना कोर्ट कचहरी होता है। तो हमने आपकी जिम्मेवारी अपने कंधे में लिया और इसीलिए अब हम लोगों ने नियम बनाया कि अब 24 घंटा बिजली आएगा और बिजली का बिल कभी नहीं आएगा।
कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और वाम दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में तीव्र विकास के लिए महायुति सरकार की सराहना की। चंद्रपुर जिले के चिमूर में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि ये महायुति सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि महाराष्ट्र पिछले दो वर्ष से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला राज्य बना हुआ है। श्री मोदी ने भाजपा के घोषणा पत्र की सराहना करते हुए दावा किया कि एआई विश्वविद्यालय, जलग्रिड परियोजनाएं, आवास योजनाएं, पाइप जल कनेक्शन, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण वायदे महाराष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए फायदेमंद होंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह मुंबई में दो रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लातूर जिले के देवनी में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने मतदाताओं को क्षेत्र में विभिन्न सड़क और परिवहन पहलों के बारे में जानकारी दी। श्री गडकरी का बीड़, जालना और नागपुर में रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकोला, अमरावती और नागपुर में रैलियां करेंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दहानू, विक्रमगढ़, पेन, सायन, कोलीवाड़ा और कल्याण में रैलियां करेंगे। इस बीच बुलढाणा जिले के चिखली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्धारित रैली उनके विमान में तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दी गई। सांसद सुप्रिया सुले ने एमबीए उम्मीदवारों के समर्थन में गढ़चिरौली के अहेरी में एक रैली की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी प्रमुख शरद पवार आज नाशिक जिले में 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे सोलापुर में प्रचार करेंगे, जबकि उनके बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे माहिम में एक रैली को संबोधित करेंगे, जहां उनके चचेरे भाई अमित ठाकरे एमएनएस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राज ठाकरे वर्ली में प्रचार करेंगे। बिहार में कल 4 विधानसभा क्षेत्रों इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान होगा। गया, भोजपुर और कैमूर जिलों के 1,277 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। एक रिपोर्ट।
बिहार की चारों विधानसभा सीटों पर कल होने वाले मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चारों विधानसभा सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। पिछले बार तरारी, रामगढ़ और बेलागंज की सीटों पर सीपीआई माले और राष्ट्रीय जनता दल ने कब्जा जमाया था। वहीं गया जिले की इमामगंज सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई थी। रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह, इमामगंज से दीपा कुमारी, तरारी से राजू यादव और विशाल प्रशांत उपचुनाव में प्रमुख उम्मीदवार हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी सभी चारों सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ रही है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
केरल में वायनाड लोकसभा क्षेत्र और चिलक्कारा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में कल होने वाले उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं। वायनाड में रोचक मुकाबला होने की संभावना है। यहां कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बैनर तले चुनावी राजनीति की शुरुआत कर रही हैं। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के सीपीआई के सत्यन मुकेरी और एनडीए के भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास उन्हें चुनौती दे रही हैं। कुल 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। असम में 5 विधानसभा सीटों पर कल होने वाले उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य में 9 लाख से अधिक मतदाता 34 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे, जिसके लिए 1,078 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध की बदलती स्थितियों और सुरक्षा खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अनुकूलित रक्षा रणनीतियों पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज दिल्ली रक्षा वार्ता के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुकूलित रक्षा केवल एक रणनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस बारे में देश का दृष्टिकोण लचीलेपन, नवाचार तथा परिवर्तनशीलता पर आधारित होना चाहिए और राष्ट्र को भविष्य की सभी चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सूचना युद्ध के खतरे का मुकाबला करने के लिए अनुकूलित रक्षा रणनीतियों को नियोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
Contemporary wars are not being fought on the battlefields alone. We, in this age of digitization and information overload, are facing an unprecedented scale of psychological warfare. The government of India is determined to employ adaptive defense strategies to counter the menace of information warfare against national security.
श्री सिंह ने कहा कि देश आतंकवाद, साइबर हमलों और हाइब्रिड युद्ध जैसे विविध प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश साइबर स्पेस तथा कृत्रिम मेधा में उभरती प्रौद्योगिकियों पर लगातार काम कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से स्वदेशी क्षमताओं और दक्षताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आईएनएस विक्रांत और डीआरडीओ मिसाइल कार्यक्रमों जैसी सफल स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए श्री सिंह ने इन्हें मेक इन इंडिया पहल की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को हासिल करने का एकमात्र माध्यम शिक्षा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने शिक्षा क्षेत्र के 5 प्रमुख पहलुओं के सुधार पर बल दिया। श्री प्रधान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से अपने राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया और प्रत्येक राज्य की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम बनाने का सुझाव दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह इस वित्त वर्ष में अब तक 15.41% की वृद्धि के साथ 12,10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार इस वर्ष 1 अप्रैल से 10 नवंबर की अवधि के दौरान रिफंड के समायोजन से पहले सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 21.2% बढ़कर 15,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में भी 5,10,000 करोड़ रुपए के संग्रह के साथ मामूली वृद्धि देखी गई, जो पिछले साल 1 अप्रैल से 10 नवंबर की अवधि के दौरान दर्ज किए गए 4,79,000 करोड़ रुपए से अधिक है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस अगले साल 8 से 10 जनवरी तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित होगा। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस वर्ष 1947 में दिल्ली स्थित आकाशवाणी के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगमन के स्मृति में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
आज से ठीक 77 साल पहले दिवाली का दिन था, जब महात्मा गांधी को बंटवारे के बाद विस्थापित हुए लोगों से मिलने कुरुक्षेत्र जाना था और वो किसी कारणवश नहीं जा सके। राष्ट्रपिता ने तय किया कि वे रेडियो के माध्यम से इन विस्थापितों को अपना संदेश देंगे। फिर उसी दिन गांधी जी का पहला और अंतिम जीवंत रेडियो प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से हुआ। मेरे दुखी भाइयों और बहनों कहते हुए महात्मा गांधी ने अपना संबोधन शुरू किया।
मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ, मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का मेरा पेशा है।
बापू रेडियो को एक दिव्य शक्ति के रूप में देखते थे। दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज बिहार के राजगीर में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। कल भारत ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 4-0 से हरा दिया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर कल मतदान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार चरम पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उभरते युद्ध खतरों का मुकाबला करने के लिए अनुकूलित रक्षा रणनीतियों का आह्वान करते हुए कहा कि ये कोई रणनीतिक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। इस वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.41% बढ़कर 12,11,000 करोड़ रुपए हो गया और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।